एक बार और बोलेंगे, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है और जो कुछ बोलना चाह रहा था उससे संबंधित ही है। ये भगवान अर्जुन को श्लोक बोल रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने आत्मा के स्थायित्व शाश्वत्व का वर्णन किया है और बोला इस कारण से तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि अपने स्वधर्म, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा। तो देखिएगा, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब ये किसी की बुराइयों का वर्णन करना, अच्छा लगना, ये केवल कलयुग का ही गुण नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि त्रेता युग में भी लोगों क्षमा कीजिएगा, द्वापर युग में भी लोगों की स्वभाव था कि कोई बुरा व्यक्ति कुछ कार्य कर देता था तो उसके बारे में लोगों को सुनना और चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता था। इसके बारे में एक फॉल्ट आता है, इसे कहते हैं एट्रीब्यूशनल फॉल्ट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशनल फॉल्ट का अर्थ ये होता है कि हम व्यक्ति के प्रति कोई परसेप्शन बना लेते हैं उसके कार्यों को देख के, उसके मोटिवेशन, उसके उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते ना। उदाहरण के लिए हम सो रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, और सामने वाला सो गया होता है तो क्या बोलते हैं, आलसी। हम जब खाते हैं तो लगता है भूख लग रही है, सामने वाला खाता तो देखो इंद्रिय संयम नहीं किया, कैसे पढ़ा नहीं, अत्याहार अत्यासस्य। और हम सभी के अंदर ये दोष है कम या ज्यादा मात्रा में, इसीलिए हमारे संबंधों में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तुरंत हम परसीव कर लेते हैं कि आज भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। यहाँ तक कि अच्छी साधना करने वाले भक्तों के प्रति भी लोगों की भावना होती है, देखो ये दिखाना चाहता है कितनी अच्छी साधना कर रहा है। अपने मन से लोग मनगढ़ंत तरीके से इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि भाई करुणावश में छोड़ के चला जाऊंगा, गुरुजनों को नहीं मारना चाहिए इसलिए मैं जा रहा हूँ, और ये लोग क्या कहेंगे, ही चिकन डाउट। चिकन डाउट समझते हैं, चिकन डाउट का मतलब है डर के मारे भाग गया, कायर है ये। और ये भी अद्भुत बात है कि अर्जुन ने शिवजी को परास्त किया था, निवाट कवचों को परास्त किया था। निवाट कवच जानते हैं? निवाट कवच कौन थे? निवाट कवच एक महान तो नहीं, भयंकर राक्षस थे जिनको देवता तक परास्त नहीं कर पाए थे और अर्जुन ने अकेले परास्त कर दिया था स्वर्ग जाकर। ऐसा व्यक्ति अगर युद्ध छोड़ रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कायर है, लेकिन लोग सोचेंगे जरूर कि ये कायर है। और आप लोगों को स्मरण होना चाहिए कि इसी युद्ध के पहले विराट युद्ध हुआ था। विराट युद्ध के बारे में जानते हैं आप? जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में युद्ध किए थे, जब लड़की के रूप में युद्ध किए थे तब हरा दिए सबको। अब कैसे, अगर भाग वापस जा रहे तो लोगों को कौतूहल होना चाहिए कि ये इतना युद्ध कौशल वाला वीर क्यों जा रहा। लेकिन पहला इंटरप्रिटेशन क्या होगा, डर के मारे जा रहा। और भगवान ये बोल रहे हैं सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे को स्मरण हो रहा है। शुद्ध भक्ति का एक डेफिनेशन है जिसमें आता है अन्याभिलाषता शून्यम, यानी कि भगवान से, भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जो उत्तम भक्त होते हैं वो भौतिक अभिलाषा नहीं करते और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जब द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा था तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुकारा या अपने लज्जा को बचाने के लिए पुकारा? तो क्या वो भक्त हैं या नहीं? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन के अनुसार भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है, अन्य किसी अभिलाषा से भगवान को नहीं पुकारता। मैं गलत थोड़ा लेवल से जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि शब्द अन्य अभिलाषा नहीं है, शब्द है अन्य अभिलाषिता। यानी प्रायः भक्त ऐसा नहीं बात करते हैं भगवान से कि हमको ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फिर वो उत्तम भक्त नहीं है, भक्त हैं फिर भी। लेकिन अगर जान पे पड़ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, एमरजेंसी की सिचुएशन में अगर भगवान के भगवान को भक्त पुकारते हैं तो ये कोई दोष नहीं है, फिर भी उत्तम भक्ति ही कहलाते हैं। इसलिए द्रौपदी शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उनके जैसे एक पतिव्रता स्त्री के लिए इस प्रकार का अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। इंटरेस्टिंग है, इसको इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जाते हैं, और इन इस कंटेक्स्ट में हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सम्मानित है उसके लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उसे टॉलरेट नहीं कर पाओगे। किसकी सीटी मिल रही है? तात्पर्य, जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि में भाग कर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। मित्रता का दुरुपयोग कैसे होगा? मित्रता का दुरुपयोग कभी सोचते हैं आप लोग? मित्रता का दुरुपयोग कैसे हो? लेकिन इसमें भगवान से मित्रता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? या तो ये भावना हम सोच सकते हैं, जो इससे मैं समझ में आ रहा है कि अरे भाई भगवान आप सब कराने वाले हैं, आप कर दीजिए, हम जा रहे हैं, हम तो पतित हैं। जैसे कुछ भक्त लोग प्रचार नहीं करते तो कहते हैं भगवान ही सब कराने वाले हैं, महाप्रभु ने बोला है, उनकी वाणी प्रचार होगी तो हो ही जाएगी, हमको प्रचार करने की क्या जरूरत है, हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है। भगवान के ऊपर रिजल्ट निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास नहीं करते। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे रिजल्ट आएगा भी नहीं। परिश्रमणे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाय। सुना है? सुना, खूब जम के याद किया, खूब जम के। परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाय न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुना नहीं आपने? बहुत फेमस है, पांचवी क्लास में याद किए थे इसको जम के, कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सिंह भी अगर बैठा रहे मुंह खोल करके तो अपने मुंह उसके मुंह में कोई हिरण प्रवेश नहीं करता। तो हमारे साधना का भक्ति का जो फल है वो भगवान की कृपा से ही आता है, लेकिन कृपा मिलती है उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो प्रयास करते हैं। ये बात भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन जंगल चले जाएंगे तो वहां जाकर के वो ब्राह्मण बन जाएंगे। अपना स्वभाव व्यक्ति त्यागता नहीं है, जैसे आप लोगों को शायद पता हो, ये बहुत मजाक बनाते थे भगवान कृष्ण बलराम जी का, जब दुर्योधन और अर्जुन उनसे सहायता मांगने के लिए आए तो बलराम जी ने कहा कि संबंधियों के बीच में युद्ध है, हम तो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहे और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और फिर जाकर के एक जगह कथा हो रही थी, नैमिषारण्य में हो रही थी, तो वहाँ पे एक साधु कथा कर रहे थे, रोमहर्षण सूत, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रोमहर्षण सूत था। और वो उठे नहीं बलराम जी को देख के, तो बलराम जी क्रोध में आए, क्रोध पे खैर उनका दिव्य है, एक तीर लिया उसको मार दिया, कहता तुमने अब सम्मान नहीं किया, मार दिया। तो जो व्यक्ति अधर्म कर रहा है उसका उसको मारना अशक्ति का धर्म होता है। भगवान बहुत उनका मजाक करते थे बाद में कि आपने सेना में तो युद्ध नहीं लड़े और जाके साधु को मारने लगे, कि ब्राह्मण को तो रक्षा करना चाहिए क्षत्रियो। ऐसे ही आचार्य लोग बोलते हैं कि अर्जुन यहाँ तो युद्ध से भाग रहे हैं, बाहर जाकर कोई बोलेगा अरे तू युद्ध से भाग गया कायर, उसी को मार के खत्म कर देंगे। अपना स्वभाव हम छोड़ नहीं पाते, तो भगवान अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने के बजाय ये बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव को उनकी सेवा में नियोजित कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल है। अगर कोई धन कमाना चाहता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, धन को कमाकर भगवान की सेवा में लगाए। इस तरह से अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकते। इस बात को गीता में भगवान बोलते हैं, निग्रह किम करिष्यति। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, आप उसे दबाने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति रिबेल कर जाएगा, कोई फायदा नहीं। जैसे मैं कभी कभी जनरली तो नहीं करता इस तरह का प्रचार, लेकिन दो भक्तों को बोल रहा था, क्या फायदा तुम्हारे इतना स्ट्रगल करने के, इतना कंपटीशन दे रहे हो, ये देखो रूम्स खाली हैं, आ जाओ रहो, साथ पाओ बाजार को, बढ़ जाओ, चले जाओ वहाँ के धाम। तो कह रहे हैं ब्रो, समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनको पूछा, मान लो को मालूम चल जाए कि 10 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ज्वाइन कर लेंगे ना? हाँ, फिर क्या फायदा कॉम्पिटिशन लेने का? तो मैंने कहा 10 साल और 50 साल में अंतर क्या है? ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप विचार करें 10 साल और 50 साल में कोई अंतर नहीं है। और ये भी आप नहीं कह सकते कि आप 10 साल जिंदा ही रहें। इस तरह से अगर कोई विचार करे तो रियली इस जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने का कोई उसका उद्देश्य नहीं रह जाएगा। आप लोग महसूस नहीं करते कि हम लोग कौन सी मशीन पे हैं, दौड़ने वाली मशीन होती है ना, वे स्ट्रगलिंग अननेसेसरली। इस जगत में हम मुकाम बनाएंगे, अपना नाम कमाएंगे, केवल नाम ही कमाएंगे, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। और वह नाम भी कितने लोग याद रखेंगे? मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, इस नाम को कितने लोग, नाम और रूप, आपके नाम रूप और लीला को कौन याद रखने वाला है? महान भक्त, तो महान भक्त बन गया, अगर महान भक्त बन गए तो याद रखेंगे, महान भक्त बनने के लिए प्रयास कहाँ करो? यहाँ के सारे भक्त हैं, कुछ ही लोग सोलह माला करते, बाकी सब लोग अपने नाम रूप गुण लीला के फेरे पड़े रहते हैं। लोग मुझे याद रखेंगे, आपको याद रखने वालों को कोई याद नहीं रखेगा, नहीं? हाँ, फिर भी लोग आसक्त रहते हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं, आसक्त है तो कोई बात नहीं, उसी स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित करने का प्रयास। यू वॉन्ट टू बी फेमस हो गया आप, यू वॉन्ट टू बी इन्फ्लुएंशियल, नो प्रॉब्लम। वो जो आपका तेज आई है, जो इन्फ्लुएंस आए, उसको भगवान की सेवा में नियोजित। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को खोकर तुम सुखी नहीं रहोगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन ना करे अपितु युद्ध में मरे। एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी कि मैं गुरुओं की हत्या कर रहा हूं, वध करूंगा। लेकिन वो बोल रहे नहीं, आप क्षत्रिय का धर्म करते हुए युद्ध कर रहे हैं, अगर आपको मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है तो आपको उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी। इससे सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है, सिंपल सा श्लोक, धर्म रक्षति इति रक्षतः। जो व्यक्ति धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। क्या बोला मैंने? धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए भक्त होने के नाते व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है और उसको त्यागना नहीं चाहिए। और ये धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा शरीर से संबंधित धर्म, स्त्री के लिए कोई धर्म होता है, पति के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए धर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, धर्म शास्त्र में बताया जाता है। और साथ साथ हमारा भक्ति का कर्तव्य, ये दोनों ही अगर हम ठीक ठीक से पालन करते हैं तो फिर व्यक्ति को बहुत उस पर आशीर्वाद भगवान का होता है, प्रकृति की तरफ से भी उस पर आशीर्वाद होता है। ये चीज़ सीखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। कोई प्रश्न है यहाँ तक किसी का? नहीं। क्या सोचेंगे जरा ये देखिएगा। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। एक भगवान का स्पेशल गुण आप यहाँ देख सकते हैं और वो है प्रचार करने की अद्भुत कला। आप किसी को प्रचारित कर रहे हो और उसको ये नहीं लगता कि इस प्रचार से मुझे क्या फायदा होगा, तो व्यक्ति इस प्रचार से प्रभावित नहीं होता। जैसे दो माताजी थीं, वो रोहिणी नंदन की स्टूडेंट थी, वो आई और मैं था, प्रभु जी थे, वो माताजी थी और मैं प्रचार कर रहा था। तो काफी समझाया मैंने किस प्रकार से हम लोग जागृत हैं, स्वप्न अवस्था में अपने शरीर से अभिनिवेश हो जाता है और जग जाते हैं स्व ध्वनि सुन करके। तो उसी प्रकार से हरि नाम की ध्वनि सुनकर हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। लेकिन बाद में उससे पूछा क्या समझ में आया, हरि नाम करते हैं हम लोग, हमारा सर दर्द कम हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। तो फिर मैं समझ गया कि इनको ये समझाना कि हरे कृष्ण मंत्र आत्म साक्षात्कार की विधि है, ये गलत टीचिंग है उनके लेवल के लिए। उनके लेवल के लिए ही बताना आवश्यक है कि आपका मन शांत रहेगा, आप थोड़ा सुखी सुख प्राप्त करेंगे। इवन अगर आप ये भी लोगों को बोलिए कि पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भी समझ नहीं पाते लोग। वो पाप रहित जीवन और पुण्य जीवन में अंतर ही नहीं समझ पाते लोग, इतने कवर्ड अप होते। तो किस तरह से लोगों को प्रचारित करना चाहिए, ये बहुत बड़ी कला है। किसको क्या चाहिए ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे उपस्थित कितने लोग हैं वाकई समझ रहे हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की विधि सीख रहे हैं, ना कि केवल एक और सत्संग। मुश्किल है ना, आप लोग हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये चीज आपको समझने में काफी समय लगेगा कि हम लोग यहाँ पे आत्म साक्षात्कार की विद्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना कि केवल एक और सत्संग जहाँ पे आप बाई चॉइस आए हैं। सत्ता किसी और जगह चले जाते हैं, वहाँ और कोई जागरण हो रहा होता है और वहाँ से छोड़कर आप यहाँ पे आए। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तब आपकी भक्ति करने का जो स्टाइल है वो बहुत परिवर्तित हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग को यहाँ भी एक पूजा पाठ लग रहा हो, जैसे आप लोग बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। मैं कुछ डांट नहीं रहा हूँ, आई कैनॉट हेल्प इट। आप लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, जितना आप जब करेंगे, भक्ति करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये समझ में आएगी सारी क्रियाएं आत्म साक्षात्कार की क्रियाएं हैं, जिससे हम अंततो गत्वा एक दिन अपने को देख पाएंगे। कहीं हम तो रोज देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे, अपने शरीर को देख रहे हैं और भगवान को भी देख पाएंगे। भगवान स्वयं बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, नहीं प्रत्यक्षावगमम धर्मम, साक्षात आप आत्मा को भगवान को देख सकते हैं शुद्ध भक्ति के माध्यम से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। किसी ना किसी दिन जब आप सुनते रहिए, जब करते रहिए, तो आपको क्लिक करने लग जाएगा कि हम एक्चुअली बहुत अलग धारा में जुड़े हुए हैं, जो कि आत्म साक्षात्कार की धारा है, ना कि केवल एक पूजा पाठ की धारा। हम भगवान के धाम पहुंचना चाहते हैं, जब तक नहीं पहुंचते हैं सांस नहीं लेना चाहिए। सांस लेने मतलब समझ रहे हैं, मतलब क्या नहीं करते कि हम लोग बैठना नहीं चाहिए चुपचाप। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं वापस उस बात का अवलोकन करूंगा एट्रिब्यूशनल फॉल्ट का, कि जब हम इस जगत में कार्य करते हैं तो लोग हमारे मोटिवेशन को नहीं देखते हैं, देख असंभव है प्राय सब लोगों के लिए। तो हमारा जो क्रिया है, हमारे जो एक्शंस हैं, वो बहुत ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। मतलब पिछले भक्त होने के नाते अगर हमारे एक्शन सही नहीं होंगे तो लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। जैसे आप किसी वैद्य के पास जाएं और जिन मरीजों को वो ठीक कर रहा है वो मरीज ठीक से दवा ना लें, ठीक से ठीक ना हो, और आपको बोले कि वैद्य बहुत अच्छा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सत्य वो वैद्य बिल्कुल सही हो, लेकिन जो उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ठीक से पालन नहीं करें, उनका बीमारी ठीक ना हो, तो आपको विश्वास नहीं होगा उस वैद्य के पास जाने। तो कोई भी भक्त इस्कॉन का अगर उसका आचरण में थोड़ा सा भी दोष है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उसके कारण लोगों का भगवान पे और प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास कम हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज बात को बोल रहे थे कि पीपल विल हैव फेथ ऑन गॉड और कृष्णा व्हेन दे विल हैव फेथ ऑन वैष्णवस। तो हम अब सेम चीज, भगवान का मित्र है और भाग रहा है, ऐसे ही यानी जो इस प्रकार से भगवान के मित्र को कार्य करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है तो उसका दोष तो भगवान पे भी आएगा ना, कि भगवान ही समझा नहीं सके। देखो भगवान का मित्र, भगवान का दोस्त, भगवान सारथी बन के आए हैं और फिर देखो कैसे भाग रहा है। ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रोटेक्शन, भगवान का गाइडेंस हमारे सभी के जीवन में है और हमारा पर्सनल कर्तव्य है, दायित्व है कि हम एक आदर्श जीवन जीने का, आदर्श भक्त होने का सिंसियर प्रयास करें। देखिए हमेशा हर समय हर परिस्थिति में आदर्श प्रस्तुत करना मुश्किल होता है, कभी कभी शरीर भी साथ नहीं देता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमारा आदर्श हम प्रस्तुत करें। आपको लगेगा कि कोई आपको देख नहीं रहा है, लेकिन सब लोग देखते हैं, स्पेशली अगर आप धोती कुर्ता में हैं, तिलक लगा लेते हैं, लाल कपड़े में हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसा भक्त लोग बर्ताव करते हैं और उसके कारण लोग आकर्षित होते हैं या विकर्षित होते हैं। आकर्षित विकर्षित देखिए पता होता है कि विकर्षित दूर जाते हैं। मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना इसलिए नहीं छोड़ता है कि गीता में कुछ गलत लिखा है, तो छोड़ा आज तक कोई नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण मंत्र में कुछ गड़बड़ है, बीच में एक राम और जोड़ना चाहिए, बीच में हरे और जोड़ना चाहिए, तो भगवान के विधि में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र में, भागवत में, गीता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्तों से मन मुटाव होने के कारण लोग भक्ति छोड़ देते हैं। तो कृष्ण भावना में एक भक्त का आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल सा उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने सुना था, आप सबने रामायण देखी होगी, तो मैंने सुना था कि जब अरुण गोविल को बाहर किसी ने सिगरेट पीते हुए देखा तो जूते से मारने लगे, और ऐसे पहले लोग उनको प्रणाम करते थे, जब वो रामायण आती तो उनको प्रणाम करते थे, तो उनके मन में इमेज तो भगवान राम का है, और जब वो रावण जैसा कार्य कर रहे हैं तो उनका लोग की श्रद्धा बहुत टूट जाती है, और हो सकता है इस जन्म में वो भक्ति करना भी छोड़ दें या फिर छोड़ने का बहाना ढूंढ लें कि देखो कैसा कर रहा था। और फिर तो भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो उनके पार्षद हैं, जो उनके भक्त हैं, उनका कर्तव्य है आदर्श रूप से कार्य करना। एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है, भगवान इस भगवद गीता में बार बार ये बोलते हैं कि तुम रिजल्ट के प्रति आसक्त मत हो। जैसे अर्जुन को युद्ध करना पड़ रहा था और हम प्रचार कर रहे हैं, तो भगवान वहां बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, वो जीतने के लिए नहीं बोल रहे। भगवद गीता में कभी भी भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जीतने के लिए युद्ध करो। आप देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग, खाली कह रहे हैं युद्ध करने के लिए युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध से पलायन कर जाना। यस, सो रहे हैं क्या आप? युद्ध से पलायन ना करना, इसमें इंटरेस्टिंग एक छोटा सा पास टाइम है। एक बार भगवान हस्तिनापुर में थे और शिशुपाल के परम मित्र महात्मा सल्व, महात्मा तो नहीं थे, सल्व नाम का एक असुर था, तो वो द्वारका वासियों को नष्ट करना चाहता था, तो उसने शिव जी की पूजा करी और उनसे एक ऐसा विमान प्राप्त किया जिससे द्वारका वासियों को बहुत भय प्राप्त होगा। ये कथा सुना है आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक विमान लेके आया, हवा जहाज उड़ने वाला था बहुत जबरदस्त, और उससे ऊपर से प्रहार करने लगा, ध्वस्त करने लगा द्वारका के जितने भी उद्यान थे, सब उद्यान को नष्ट करने लगा। तो जितने भी सात्यकी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जितने भी योद्धा थे उसे युद्ध करने के लिए आए, और उन्हें बाण चलाए, और बाण चलाए कैसे, इधर कभी आ जाता कभी उधर चला जाता कभी उधर चला जाता, जब उधर जाता तो उधर जाते दौड़ के, उधर चला जाता तो उधर दौड़ते दौड़ के जाते। बहुत हैरान परेशान हो गए, और इधर ग्राउंड से उनकी फोर्सेस चल रही थी कि सल्व की आर्मी ने अटैक किया था, तो उसमें कुष्मांड, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, उनका जो सेनापति था उसने प्रद्युम्न के ऊपर जोर से प्रहार किया और वो बेहोश हो गए। तो जो उनके सारथी थे वो उनको युद्ध से दूर लेके चले। इतनी देर में भगवान कृष्ण भी आ गए और युद्ध हो रहा था, और प्रद्युम्न के ऊपर उन्हें थोड़ा जल छिड़का तो प्रद्युम्न उठते हैं, तो कहते हैं ओ तुमने क्या कर दिया, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा, जितनी भी रानियां हैं और जो माताएं हैं उनको थूकेंगी तो नहीं बोलते, कहते मेरी उलाहना करेंगी कि तुम तो नपुंसक हो, तुम युद्ध से वापस लौट के आ गए। तो मैं सारथी ने बोला देखिए युद्ध का धर्म ये भी है कि अगर सारथी डेंजर में हो, खतरे में हो तो रथी को बचाना चाहिए और रथी खतरे में हो तो सारथी को बचाना चाहिए। तो मैंने अपना कर्तव्य किया। फिर प्रद्युम्न आते हैं तो ये घटना मुझे वहाँ भी स्मरण हो रही कि वहाँ पर भी एक क्षत्रिय को वापस जाने की बात बहुत घृणित मानी जा रही थी। और एक और पास्टर याद आ रहा है वृहनला के रूप में, ये भी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को शायद पता हो महाभारत की कथा है, ये एक साल के लिए 13वां साल जो था उसमें वो लोग अज्ञातवास में थे। सबने महाभारत देखी होगी थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो द्रौपदी को पे कीचक नाम का, कीचक किसका, जो विराट नरेश थे उनकी पत्नी, उनका साला, उसकी बुरी दृष्टि थी तो कीचक को भीम ने मार दिया। तो ये लोग कैलकुलेशन करने लगे, कीचक को दुर्योधन मार सकते थे, भीष्म पितामह मार सकते थे और भीम मार सकता था। तो लोग कैलकुलेशन लेके सोचने लगे जरूर भीम ने मारा होगा, और जिस तरह से उसको मारा था पिकअप पीस करके उसको लग रहा था कि भीम ने मारा होगा। तो उन्होंने अपनी तिकड़म लगाने के लिए, क्योंकि बहुत लगा रहे थे कहाँ से, अगर वो ढूंढ लेते तो फिर से उनको 12 साल का वनवास होता, तो पूरी ताकत लगा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, विराट जो नरेश हैं उनकी जो गैया थी राज्य की प्रॉपर्टी होती है उसको हरण करके ले गए सिलाए। तो फिर और दूसरी तरफ मत्स्य राजा था उसने अटैक कर दिया, तो उनसे लड़ने के लिए विराट के राजा युद्ध करने चले गए, और इधर गैया लेके चले गए तो उनकी रक्षा कौन करेगा, सारे सब उधर चले गए युद्ध करने के लिए। तो जो उत्तर था विराट के नरेश का लड़का, उसने बोला मैं अकेले ही सबको हरा दूंगा, क्या है ये मेरे सामने, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे सारथी चाहिए। तो द्रौपदी जो उस समय सैरंध्री के नाम से थी, उन्होंने बोला ये विरहनला जो है इसने अर्जुन की सारथी बन चुकी है पहले, तो आप इसको लेके जा सकते हैं। तो बोला ये मैं एक नपुंसक को लेके जाऊंगा, अरे ये क्या करेगी, ये मतलब करेगी करेगा पता नहीं, बीच में थे वो, लेकिन क्या उसको कैसे लेके जा सकता हूँ। लेकिन नहीं आप विश्वास करिए इसको लेके जाइए। तो लेके गए वो, और जब उन्होंने देखा बाप रे, लेकिन उनके अर्जुन ने जब देखा भीष्म पितामह को तो घबराए नहीं थे, ध्यान रखना चाहिए, डरे नहीं थे, उनके हृदय में मोह हो गया था, लेकिन इनकी तो हालत खराब हो गई कि वो भागा, रथ छोड़े और भागे वहाँ से, कहते मेरे जान बचाए उनके लाखों पाए वाला होता, मेरे को युद्ध नहीं करना। तो लिटरली अर्जुन दौड़ करके उनको पकड़ के लेके आते हैं, फिर कहते चलो, और फिर वो एक पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ से अपने अस्त्र उतारते हैं, फिर युद्ध करते सबके साथ। हम देख रहे हैं कि सच्चा क्षत्रिय जो नहीं होता है उस प्रकार से युद्ध से भागने लगता है, और जो महान क्षत्रिय है अर्जुन जैसे वो कभी उससे भागते नहीं। तो इनके लिए बहुत ही गर्हित कार्य होता है जिसको भगवान कभी नहीं चाहते। ठीक है, एक श्लोक और देखेंगे फिर हम रुक जाएंगे। अवाच्य वादांश बहुना वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान अर्जुन के इस भौतिक दया के भाव को काट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी दया के कारण तुम दया का प्रदर्शन कर रहे हो, कि लोग मर जाएंगे, इन्हें बड़ा कष्ट होगा, इस कारण से युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई तुम्हारे दया के भाव को देखने वाला नहीं है, तुम्हारे मोटिवेशन कोई नहीं देखेगा, कहेगा तुम कायर थे और तुम भाग गए। एक श्लोक और देख लेते हैं, इजी, इसमें कोई समझाना नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब भगवान बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम मरो या जियो तुम्हारा दोनों ही तरह से लाभ है, क्योंकि यही चीज अर्जुन बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैं इनको मार दूंगा तो मैं सुखी कैसे होऊंगा? जब तो मारे जाएंगे तो मैं युद्ध का सॉरी राज्य का भोग कैसे करूंगा? और अगर मैं मर गया तो मेरी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तो फायदा क्या? देखिए, ये इससे पहले भी हमने चर्चा करी है, जब व्यक्ति को ये लगने लग जाए कि इस कार्य को करने से मेरा क्या फायदा, तो सारी शक्ति होने के बावजूद भी इस कार्य को नहीं कर पाता होता है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक सबसे खतरनाक चीज़ है संशय। आप लोगों को याद हो मैंने बताया था ये बात कि इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हो रहा था, और वृत्तासुर पे इंद्र ने गदा चलाई, गदा पकड़ के वृत्तासुर ने वापस मार दी, तो उनके हाथ में जो वज्र था वो भी चलाने से डर रहे थे। कह रहे थे अगर ये वज्र पकड़ के चला दिए मेरे पे तो मैं खत्म हो जाऊँ। तो वो उनको वृत्तासुर को उन्हें टीचिंग करनी पड़ी, मोटिवेशनल सेमिनार देना पड़ा, डिप्रेशन से बाहर निकालना पड़ा उन्हें कि भाई तुम चलाओ, ये भगवान का अस्त्र है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास महान अस्त्र है हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन अभी सोचता रहे मैं 16 माला से जाऊंगा क्या, उसी इस संशय में पड़ा रहेगा तो वो रह जाएगा। और सोचिए, मान लीजिए जो 16 माला कर रहे थे आपके बगल में मर रहे हो, दोनों लोग साथ में मर रहे हो, और आप कहेंगे ठीक है आप 4 माला कर रहे थे, अगले नेक्स्ट जीवन फिर से आइए, तो आप कहेंगे अरे उसी वक्त प्रभु जी की बात सुन लेना चाहिए। तो इसलिए बहुत सोचते नहीं रहना चाहिए। एक मैंने अपने जीवन में देखा, मैं दूसरे महीने से मतलब मैं दो महीना एक माला जब किया उसके बाद 16 माला करने लगे, बिकॉज इट मेड सेंस टू मी। उन्हें बोला कि तुम कितना समय अपना कैंटीन में बर्बाद करते हो, टीवी में बर्बाद करते हो, निकाल के 16 माला करो। उसमें ऑब्वियसली एज अ स्कूल में रहते हुए 2-4, 5-10 दिन छूट भी गया होगा, 8 माला हुआ होगा, लेकिन फिर भी 80-90% रहता था, उसके बाद 16 माला चल रहा है। तो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं अब आगे बुढ़ापे में जब मेरी इंद्रियां और शक्तिशाली हो जाएंगी, जब मुझे आंख से और अच्छे से दिखाई पड़ेगा, मेरे कान से अच्छे सुनाई पड़ेगा, वाणी में बहुत शक्ति रहेगी, तब हम भजन करेंगे। अभी तो मेरी इंद्रियों में शक्ति नहीं है सब, है ना। आप लोगों के साथ ऐसे ही होने वाला है ना, कुछ उल्टा होगा। हाँ, बुढ़े लोग बोलते हैं कि अभी आपकी करने की उम्र है नहीं, हमारी उम्र में आना तो कर लेना, और उनसे पूछो आप क्यों नहीं करे, हमसे तो होता नहीं। सलूशन क्या है इसका? एक्चुअली आप सोचिए, अगर भोग का संस्कार बहुत अधिक पड़ गया है तो उससे तोड़ना बहुत मुश्किल है। भोग क्या कोई भी संस्कार, अभी एक वक्त से मैं कल उनको बात कर रहा था, बोले उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है तो रात में जगने की उनकी आदत पड़ गई है, तो 1 बजे सोते हैं, 8:30 बजे उठते हैं, तब वो उस हैबिट को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जीवन भर अगर भोग करते रहे तो वो 60 साल में योग कर रहे कैसे हो पाएगा? बहुत संभव, बिल्कुल संभव नहीं। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। और ये हमारे संगी है। भगवान इस बात को 6 अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसका पतन भी हो जाता है तो भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, यानी हार गए या डिफीट हो गया, पतन हो गया तो भी भगवान के धाम नहीं पहुंच पाए तो भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर उसके बाद फिर मौका मिलेगा भक्ति करने का। फिर क्या दिक्कत है भक्ति करने में? दिक्कत बस हमारे मन की है, जिसमें हम कुछ ना कुछ अदर फिल इन द ब्लैंक्स बहाने भर लेते हैं, और फिर कहते हैं इसमें से मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें से नहीं कर पाऊंगा, समय बीतता चला जाता। तो सिर्फ खड़े होइए मतलब समझ रहे, अभी खड़े मत होइए, आरती नहीं हो रही, खड़े होने का मतलब उत्साह के साथ भक्ति करने का प्रयास करिए। सोचते मत रहिए, रथ में तो तुम लोग बैठे हुए हैं, भगवान भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोचते मत रहिए कि मैं क्या करूँ, घर वाले सोचेंगे क्या, परिवार वाले क्या सोचेंगे, वो सोचते रह जाएंगे और सोचते सोचते वो मर जाएंगे। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स। समय निकाल करके फिर अच्छे से भक्ति करना चाहिए। ठीक है, यहाँ विश्राम करेंगे, विश्राम मतलब ऑब्वियसली हम रुकेंगे।